ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आपको कई श्लोक चैतन्य भागवत से पढ़कर सुनाएंगे और इस पूरे अध्याय में आप पढ़ते हो कि महाप्रभु ने कैसे उनके भक्तों को कहा घर घर जाओ, क्या करो, प्रचार करो। आप सब प्रचार करना चाहते हो? पक्का? ये है चैतन्य भागवत का सेवा, बोर्ड में लिखा है, प्रति घरे घरे, प्रति घरे घरे गिया हरे एक भिक्षा, बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, प्रति घरे घरे गिया हरे एक भिक्षा, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, पति घरे घरे किया कराए भिक्षा, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। माता जी इसका अनुवाद इस प्रकार से है, इंग्लिश में, गो टू एवरी हाउस एंड बेग इन दिस वे, चैंट द नेम ऑफ कृष्णा, वर्शिप कृष्णा, follow Krishna's instructions. ये बात दोहराई है। Go to every house and beg in this way. Chant the name of Krishna. Worship Krishna. Follow Krishna's instructions. हिंदी में हर घर में जाओ और भीख मांगो। क्या? कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। और इस श्लोक से पहले एक और श्लोक है, सुना सुना नित्यानंदा, सुना हरिदास, सर्वथा मारा आज्ञा करो प्रकाश। सुनो नित्यानंदा, हरिदास, जाओ मैं प्रचार करो हर जगह। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवैष्णव स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामय ददाति स्वाहा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाय। चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की सेवा पर बल दिया, क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण ये प्रचार की सेवा पर बल देते हैं। 18वें अध्याय में गीता के भगवान कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, मैं प्रचार करता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान नित्यानंद और हरिदास को बुलाकर कहा, जाओ हर कोने में और मेरा प्रचार करो। और आगे ये कहा गया है, महाप्रभु ने कहा, हर घर में जाओ और लोगों से भीख मांगो। अक्सर लोग भीख मांगते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और भीख मांगो क्या, आप कृपा करके कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश ये था कि घर घर जाकर प्रचार करो। आगे उन्होंने कहा, इसके अलावा और कुछ चर्चा मत करो, यानी क्या प्रचार करने जा रहे हो और बैठ के फिर जलपा करो। आगे कहा गया है, इसके अलावा और किसी विषय की चर्चा मत करो और सारा दिन प्रचार करके शाम को आकर मुझे बताओ आपने क्या प्रचार किया। महाप्रभु ने कहा, इसके अलावा और कुछ मत संदेश दो, वो शाम को आकर बताओ कि क्या प्रचार किया। जैसे कि जब जिस प्रॉपर भी पृथ्वी पर थे तो शाम को पूछते थे भक्तों से, आज प्रचार कैसे हुआ, कितने लाइफ हमें बनाए, कितनी किताबें हम बांटी। और हम रोज सुबह स्कोर पढ़ते हैं प्रचार का भगवान को। तो ये है महाप्रभु के आदेश के अनुसार। महाप्रभु ने ना यही कहा घर घर जाके प्रचार करो, आगे उन्होंने ये भी कहा, आकर मुझे रिपोर्ट दो रोज शाम को कि प्रचार का क्या नतीजा था। आगे उन्होंने कहा, कृष्ण प्राण कृष्ण धान कृष्ण से जीवन हेरा कृष्ण बाले बाले हो एक मना। कृष्ण जो है वो ही आपका जीवन है, और कृष्ण भक्ति ही असली धन है। आज लोग ये नहीं समझ पाते कि असली धन क्या है। यहाँ महाप्रभु कह रहे कृष्ण धाना, कृष्ण ही तुम्हारा असली धन है। अभी जो हरिनाम करते हो ये है असली धन, और कृष्ण तुम्हारा प्राण है। और सब भाइयों कृष्ण का नाम लो। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक श्लोकों के द्वारा नित्यानंद हरिदास को आदेश दिया, जाओ घर करो क्या करो, इसके अलावा और कुछ बात मत करो, जल्पा नहीं करो, सिर्फ कृष्ण चर्चा करो। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद हरिदास ने प्रचार शुरू किया, घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे। कई घरों में वो गए, लोगों ने उनका भय उत्साह के साथ स्वागत किया। लोगों ने कहा, सन्यासी दोनों थे सन्यासी वस्त्रों में, तो लोगों ने कहा, सन्यासी आए हमारे घर में हमारे घर को पवित्र बनाने के लिए, बैठिए और क्या है आपका आदेश। तो महाप्रभु का संदेश क्या था, सबसे कहो बाजो कृष्ण बोलो कृष्ण कुरु कृष्ण शिक्षा, यही वो करते थे। और नित्यानंद हरिदास का ये संदेश सुनकर अनेक भक्तों ने क्या कहा, हाँ हम पालन करेंगे, जरूर आप हमारे घर में आओ, प्रसाद ग्रहण करो। और नितिन हरिदास कहते थे, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद नहीं चाहिए, सिर्फ आप हरि का नाम लो, इसमें ही प्रशंसा है। ये चैतन्य प्रभु का संदेश, बोलो कृष्णा, सदा कृष्णा का नाम लो। कृष्णा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप दिन रात नाम लोगे तो भी थकोगे नहीं। करि काले नाम रूपा कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के द्वारा, और कृष्ण के नामों में इतनी शक्ति है कि अगर वो कोई अज्ञानता के साथ भी नाम लेगा तो उसको उसे लाभ पहुंचेगा। इसके लिए शास्त्र का निर्णय क्या है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो न सेवन सेवन सेवा एवं गति। और कृष्ण की उपासना करो। कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं उनके आचर विग्रह के रूप में, और इस आचर विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये पत्थर की मूर्ति है या लकड़ी की मूर्ति है, हमें ये सोचना चाहिए यहाँ भगवान स्वयं प्रकट है और भगवान की सेवा में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास और नित्यानंद घर घर जा रहे थे, और अनेक व्यक्तियों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया और कहा, हम आपके आदेश का पालन जरूर करेंगे, हम महाप्रभु के संदेश के अनुसार उन्होंने हरि नाम करना आरंभ कर दिया। पर कई घर में लोग गए, लोगों ने कहा ये तो पागल है, और निमाई की संगत में रहकर और भी पागल बन गए हैं, अभी आए हैं हमें पागल बनाने गए, जाओ जाओ जाओ। तो कईयों ने उनकी बेइज्जती की, पर उन्होंने सह लिया। जब आप प्रचार के कार्य में जुड़ते हो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति हमेशा साथ देगा, हमें ये भी तैयार रहना चाहिए कि कई इसका विरोध करेंगे, कई हंसेंगे। आप जब हरि नाम का प्रचार करते हो, ये तो नहीं कि सब उत्साह से स्वीकार करते हैं, कई करते हैं, कई कहते हैं वो कोई काम धंधा नहीं है क्या, हर साल आ जाते हो किताब बांटने कहते हैं लोग, तुम जवान हो जाओ नौकरी करो जैसा किताब बेचते हो, कहीं ऐसे भी कहते हैं। तो महाप्रभु के समय भी जब नित्यानंद हरिदास प्रचार कर रहे थे, कईयों ने कहा वो निमाई तो पागल है। पागल क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ले रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो कईयों ने उसका विरोध किया, कईयों ने कहा ये तो वह धर्म को बदल रहा है, और जो मुसलमान थे उन्होंने विरोध किया और कहा अगर हम इसके संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। एक मुसलमान था जो बार बार जाकर काजी से शिकायत करता था, रोको न्याय के संकीर्तन आंदोलन को। तो काजी ने एक दिन कहा तुम दिन में आकर 10 बार मुझे शिकायत करते हो, रोको रोको रोको, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम हरि नाम बोल रहे हो, ये क्या है? तो फिर उस मुसलमान ने कहा ये बात सच है, जब से मैंने हरि नाम सुना है ये शब्द मेरी जीभ से निकलते ही नहीं है। तो कई ने विरोध किया था और कई हिंदुओं ने भी विरोध किया था. क्यों? क्योंकि महाप्रभु से पहले स्मार्ट ब्राह्मण लोग धन कमा रहे थे यज्ञ इत्यादि करके, और ये महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार किया, इसमें तो कोई खर्चे की जरूरत ही नहीं है. तो कई घरों में वो गए, लोगों ने कहा कि जिमाई तो पागल है, और इन पागलों को भेज दिया है हमारे घर में, हमें पागल बनाने गए, जाओ जाओ. कई घरों में वो गए, लोगों ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया. तब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन शिवास आंगन में आरंभ किया. शिवास आंगन है हमारे मायापुर मंदिर के निकट, और महाप्रभु ने वहां शिवास आंगन में हरिनाम आरंभ किया, और 8-8 घंटे एक साथ हरिनाम करते थे, और अंदर केवल जो महाप्रभु के प्रसिद्ध भक्त थे उन्हें आने की इजाजत थी. महाप्रभु की दिव्य लीला हर व्यक्ति नहीं समझ पाता. तो कई शत्रु बन गए, कई नवदेववासी की इच्छा थी अंदर आने के लिए, पर शिवास उन्हें अंदर आने नहीं देता. एक ब्राह्मण था जो बड़ा तपस्वी था, जिसने जिंदगी भर केवल फल और दूध खाया था. तो वो रोज आता था शिवास के पास, मुझे आने दो अंदर, मुझे अंदर आने दो, महाप्रभु का लीला को देखना चाहता हूँ. शिवास कहता नहीं नहीं नहीं. फिर शिवास ने उन्हें इजाजत दी. एक छोटा सा छेक था जिसके पीछे उन्होंने कहा, यहां से तुम देख सकते हो, वो महाप्रभु तुम्हें नहीं देख पाएंगे. तो ये ब्राह्मण वो छेक के पीछे खड़े होकर देख रहा था. महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, एकदम उन्होंने कीर्तन रोक दिया और कहा, यहां कोई है जैसे नहीं होना चाहिए. तो शिवाज घबरा कर कहने लगा, हाँ हाँ एक ब्राह्मण है जो बड़ा तपस्वी था, जो मुझे रोज कहता था आपका कीर्तन का दर्शन है. महाप्रभु ने कहा, केवल दूध और फल खाने से मेरा भक्त थोड़ी बन जाता है, भक्ति योग के द्वारा बन सकता है. फिर महाप्रभु जी के पास से वो भक्त ब्राह्मण भक्त बन गया. तो महाप्रभु जी ने जब संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, सब लोग अंदर नहीं आ पाते थे, केवल जो उनके प्रिय भक्त थे उन्हें ये सुविधा दी गई थी. तो जब नित्यानंद हरिदास घर का जा रहे थे, तो कई घर में वो पहुंचते थे जहां की लोग कहते थे, हमने जब प्रयास किया अंदर आने के लिए शिव संगन में, तुम्हारे भक्तों ने हमें रोक दिया, कहा नहीं आ सकते, अब तुम हमारे घर नहीं आ सकते, मारो इन्हें, मारो. मारा नहीं, जो जो कहते थे मारो मारो मारो. तो ये था हरिदास और नित्यानंद का अनुभव. तो प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, पर हमें ये भी ध्यान रहना चाहिए कि जब आप प्रचार करने जाओगे तो अनेक कठिनाइयों का भी कई बार सामना करना पड़ता है. कई बार जब आप प्रचार करते हो तो लोग बेइज्जती भी करेंगे, कई कहेंगे वहीं रुचि है, कई कहेंगे वहीं रुचि नहीं है. पर जो भक्त है भगवान का वो इसे विचलित नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसे पता है ये भगवान की इच्छा है. कई बार संकीर्तन के भक्त कहते हैं, अगर किताबें जल्दी जल्दी बिकी तो फिर हमारा उत्साह ऊंचा रहता है. वहां जब हम अनेक भक्तों से बात करते हैं, वो किताब वो नहीं लेते, तो हमारा उत्साह کام ہو جاتا ہے. اس کا اتر کیا ہے؟ اتر یہ ہے اچھا ہمیشہ رہنا چاہیے, کیونکہ پرم بھگوان پرسن ہوتے ہیں ہمارے پریاس سے. اور اگر بھگوان نتیانند ہری داس کا کوئی اپمان کر سکتا ہے تو ہماری تو بات چھوڑو. تو یہ مہاپربھو کا آندولن ہے اور یہ پرچار کی سیوا پر ہمارے آچاریوں نے ادھک بل دیا ہے. ٹھاکر بھکتی میں اور 1896 میں ایک گرنتھ لکھا تھا مہاپربھو کے جیون کے اوپر, جو کہ انہوں نے وشو کے انیک مہاودیالوں کو بھیجا, اور انہوں نے آگے ان کے پرتندھی بھکتی سدھانت سارسوتی کو یہی آدیش دیا تھا کیا پرچار کو بڑھانے کے لیے. تو بھکتوں کی اچھا رہتی ہے کہ ہم پرچار کو بڑھائیں. اور پرہلاد مہاراج نے کیا کہا اس وشو میں, جب میں دیکھتا ہوں کہ کس پرکار لوگ دکھ کی استھتی کو سکھ کی استھتی میں بنانے کا پریاس کر رہے ہیں, مجھے اتیانت دکھ ہوتا ہے. تو ہم پرچار کی سیوا میں کیوں جڑتے ہیں؟ نفع کمانے کے لیے نہیں, کیونکہ ہماری اچھا ہے کہ پتی لوگوں کا ادھار کیا جائے. چیتن مہاپربھو تھے پتی پرواد, اور نروتم ناتھ ٹھاکر کیا کہتے ہیں, شری کرشن چیتن پربھو دیا کر مورے تما بنا کے دیا دو جگتن سنسارے. پتیت پوان ہے تو توا بتارا وہ سمے پتیتا پربھو نہ بھائی میرا. آپ اوتارت ہوئے ہو پتیتوں کے ادھار کے لیے, اور اس کلیگ میں لوگ پتیتوں کی کمی ہے, ہم سب ہی پتیت ہیں. تو مہاپربھو کہتے ہیں, نروتم ناتھ ٹھاکر کہتے ہیں, آپ پرکٹ ہوئے ہو کس نے پتیتوں کے ادھار کے لیے. تو یہ ہونا چاہیے ہمارا بھاو کہ ہم نے پریاس کرنا ہے لوگوں کی اگیانتا کو دور کرنے کے لیے. تو چیتن مہاپربھو کے آدیش کے انوسار چیتنند ہری داس پرچار کرے تھے. اور حالانکہ کئی استھانوں میں ان کی بےزتی ہوئی, انہوں نے اپنا پرچار کا کاریہ نہیں روکا, اور وہ پرچار کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا دو بھائی شراب کے نشے میں اور ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے تھے, گالی دے رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا وہاں کے لوگوں سے, کون ہیں یہ دو بھائی جھگڑا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے بال کو کھینچ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا, ارے یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں, ان کے پاس بالکل مت جانا, ان کے پاس جاؤ گے تو زندہ نہیں لوٹو گے. اور ان کا جنم تو برہمن کول میں ہوا تھا, پر بری سنگت میں گھر کر ہر پرکار کا پاپ کر رہے ہیں, اور ان سے بچ کر رہنا. تو نتیانند سوچنے لگے کہ اگر ہم ان کا ادھار کر دیں تو چیتن مہاپربھو کی مہیما اور بھی بڑھے گی. لوگ کہیں گے مہاپربھو نے ایسے پتیتوں کا ادھار کر دیا. تو اس آدیش کے ساتھ, اس بھاو کے ساتھ وہ آگے بڑھے, وہ ان دو شرابیوں کے پاس کو پرچار کرنے لگا. اور جیسے ہی انہوں نے بھگوان کا نام سنا, انہوں نے کیا کیا, گالی دے کر ان کو پیٹنے آ رہے تھے. دیتے ہیں ہری داس کو بھاگنا پڑا, اور جیسے نندا نے ہری داس کو کہا, بھاگو بھاگو بھاگو, دونوں بھاگے. جگہ مدائی جو تھے یہ شراب ماس وغیرہ کھاتے تھے, तो उनका पीछा नहीं, उनको पकड़ नहीं पाए। और इधर नंदा ने कहा, हम क्यों गए उधर? और लोगों ने कहा, अच्छा हुआ, हमने तो बोला था इन शराबियों के पास मत जाओ, जब ही वो गए अच्छा हुआ कि उन्हें भगा दिया। और जब शाम को नित्यानंद और हरिदास भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा, क्या आज कितना प्रचार किया, कितने लोगों को जोड़ा? उन्होंने कहा, जो अभ्यास था जगाए मलाई के साथ। जब उन्होंने ऐसे कहा तो भगवान ने कहा, वापस जाओ। अगले जैसे नंदा हरिदास वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनको भय था जो शराबी भाई उनको मारेंगे या गाली देंगे। महाप्रभु ने कहा, नहीं वापस जाओ। और महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो फिर वापस लौटे, फिर उन्होंने प्रचार किया। और जब फिर प्रचार किया तो क्या अनुभव था, जैसे मलाई ने देखा, ये तो फिर से वापस आ गए, उन्हें हमने कल बखाया था और बोला था इधर वापस नहीं आना, और वापस आ गए। तो मलाई ने क्या किया, एक पत्थर को मारा, जिसके कारण नित्यानंद के माथे से खून बहने लगा। महाप्रभु ने तो त्रिनाद पिशुनी चेना का संदेश दिया है, त्रिनाद पिशुनी चेना त्रिशासना आना लेना मना लेना कितना विशाल, हमें अत्यंत सहनशील होना चाहिए। तो जब महाप्रभु ने देखा कि मलाई ने पत्थर फेंका है, जिसके कारण नित्यानंद के माथे से खून बह रहा है, तो महाप्रभु वहां तुरंत पहुंचे और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा इनका वध करने वाले थे, जबकि नित्यानंद ने रोक दिया। उन्होंने कहा, यही है एक नमूना, इस कलयुग में अब ऐसे लोगों का भी उद्धार करना है। और फिर जब मलाई ने देखा कि मैंने पत्थर फेंका है, खून बह रहा है, जब भी नित्यानंद कह रहा है कुछ मत करो, तो उनके हृदय में पछताव आया और उन्होंने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ इस पाप के कार्य के परिणाम से बचने के लिए। उनको सेवा दी गई, उन घाट एक मलाई घाट, उसको साफ करो दिन में हजारों बार। तो श्री प्रभुपाद जब विदेश में गए, जब उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया, तो जगाए मलाई जैसे लोग थे। जब प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया, एक समय चैत्र में महाप्रभु झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, जब झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, उन्होंने जो पशु थे उनसे भी हरिनाम करवाया। तो उसी प्रकार श्री प्रभुपाद ने जब इस आंदोलन की स्थापना की, झारखंड जैसे पशु थे, जगाए मलाई ऐसे भक्त थे, तो उनको भी अपने प्रचार के माध्यम से जोड़ा। तो अगर प्रभुपाद प्रचार नहीं करते तो जुड़ पाते नहीं। उन्होंने प्रचार किया 17 साल की आयु में, गुरु के आदेश को पूरा करने का प्रयास किया, अंत में सफलता प्राप्त हुई। तो श्री प्रभुपाद जी की हार्दिक इच्छा थी कि हम भी प्रचार के कार्य में लगे रहे, और प्रचार के कार्य में जब हम जाते हैं तो हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये जो ग्रंथों की सेवा है, ये सेवा पर प्रभुपाद जी ने बल इसलिए दिया क्योंकि उनके गुरु महाराज ने भी इस सेवा पर बल। एक समय जब प्रभुपाद राधाकुंड में थे उस समय भक्ति सिद्धांत जी यज्ञ ये ब्रजमंडल कर रहे थे तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगा की तस्वीर खींची और कहा ये जो ग्रंथों के वेतन की सेवा है ये क्या है बेहद मृदंगा। सारे मृदंगा की आवाज थोड़ी दूर तक जाती है पर ग्रंथ को आप बॉम्बे में बांटोगे लंदन में पढ़ सकते हैं और आपको कुछ पता नहीं इन ग्रंथों का प्रभाव कब पड़ेगा। बाबा जी कहते थे टाइमलेस बॉम्ब किसी वगैरह भी ब्लास्ट हो सकता है। मैं कई घटनाओं को जानता हूं जहां की 10 साल तक गीता किसी ने पढ़ा नहीं। एक भक्त हैं आज जो भक्त कैसे बने 10 साल पहले उन्होंने गीता खरीदी थी पढ़ा नहीं अलमारी में रख दिया। 10 साल के पश्चात कोई दुर्घटना बीती जिसके कारण वो दुखी थे। भगवान कहते हैं ना चातुर्विधा भजन से हम 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। क्या ये 4 परिस्थिति? एक जिसको धन चाहिए, दूसरा जो रोगी पीड़ित जिज्ञासु और ज्ञान के आधार पर। तो जब व्यक्ति दुखी होता है तो कई बार सोचता है चलो भगवान की तरफ। तो इस व्यक्ति ने गीता पढ़ना शुरू किया क्योंकि 10 साल तक उसने खोली भी नहीं थी। पढ़ना शुरू किया इसको उनके मंदिर जाना शुरू किया और अंत में भक्त बन गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। एक बार एक भक्त है वो किसी की शादी में गया था एक भक्त है जो किसी शादी में गया था। शादी में वो गीता बांट रहे थे सबको और उसने गीता ली पढ़ना शुरू किया और भक्त बन गया। एक समय अहमदाबाद में हमारा एक भक्त घर घर जाकर गीता बांट रहा था। एक घर में आया जहां 2 भाई थे दोनों बिल्कुल हैंडीकैप्ड और दोनों व्हील चेयर में थे। उस लड़के ने उनको प्रचार किया उन्होंने गीता ली गीता पढ़ना शुरू किया और दोनों भक्त बन गए। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं किसी न किसी माध्यम से हमें ग्रंथों को लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। और आपको कुछ पता नहीं कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा। अमेरिका में एक भक्त मिला था मुझे समकृतन भक्त है। मैंने उसे पूछा तुम भक्त कैसे बने। उसने कहा कि मैं मेरे मित्र की गाड़ी में जा रहा था और मित्र की गाड़ी के पीछे एक भगवद गीता पड़ी थी। तो मैंने कॉलेज में भगवद गीता का सुना था तो मैंने जब देखा कि भगवद गीता है तो मैंने उसे पूछा मैं ये बोरो कर सकता हूँ मांग सकता हूँ तुम्हारे से। उसके मित्र ने कहा वाई बोरो ठीक है मांगना क्या ले लो। तो मैं हरे कृष्ण के भक्त को मिला था जिसने इतने उत्साह से प्रचार किया कि मैं नहीं नहीं बोल पाया पर मेरे इसमें कोई रुचि नहीं। उसने वो गीता ली और पढ़ना शुरू किया और भक्त बन गया। तो ऐसे हजारों हजारों उदाहरण है। तो ये जो मैराथन की सेवा है ये सब सेवा में सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे में असल में प्रचार का उत्साह सारा साल रहना चाहिए, ये नहीं कि साल में एक महीने। और हम प्रचार क्यों करते हैं? प्रॉपर महाचार्यों को प्रसन्न करने के लिए। वैष्णव की इच्छा है शिक्षा पतितों का उद्धार हो। और अगर हम उत्साह से प्रचार करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा भी होगा। आप भी अगर किसी दुकान में जाओ और बेचने वाला उत्साहित है तो ज्यादा प्रभावित होते हो, नहीं? अगर आप किसी दुकान में जाओ और सेल्समैन आपकी तरफ देखे भी नहीं तो आप खरीदना भी चाहो तो नहीं खरीदोगे। तो प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में कहा था, लोग इन ग्रंथों को लेते हैं हम भक्तों के उत्साह से प्रभावित होकर। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये हम सबको मौका देती है भगवान के शरणागत होने का, और सबको मौका देता है, मिलता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कई बार भक्त पूछ कहते हैं, पर हमने तो ये कभी किया नहीं पहले, हमारे में ये शक्ति नहीं है। तो भगवान इस विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो प्रयास करोगे अगर कमी भी है तो कमी दूर हो जाएगी। तो हर साल हमारे भक्त भारत में ही नहीं विदेश में भी ये ग्रंथों का मैराथन करते हैं। भारत में तो इस समय सागर के बॉम्बे इलाके में मौसम बहुत अच्छा है, पर विदेशों में गहरी ठंड है इस समय, बहुत ठंड है, कई स्थानों में बर्फ है। पर इस बर्फ में ठंडे वातावरण में भी हमारे जो भक्त हैं प्रचार करने जा रहे हैं। पीस दिस पॉइंट I will. So we can talk to them. वो प्रचार करने जाते हैं केवल एक ही कारण, प्रभुपाद जी से प्रसन्न होंगे। तो आप सब जुड़िए इस सेवा में, और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान अवश्य ही सहयोग देंगे। God help those who help themselves. ये साल आपके बॉम्बे के मंदिर ने ये जिम्मेदारी दी है, कितनी गीता पाठने की? 2 लाख। पिछले साल 1 लाख अस्सी हजार के लाख। और ये ग्रंथों के वितरण की सेवा जो है सबके लिए है, जो ब्रह्मचारी हैं गृहस्थ भक्त है सबके लिए। आखिर सबको भगवान की कृपा चाहिए। एक समय महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। इन्हें खून की बीमारी थी, पर वो इतने दयालु थे, उनका पूरा शरीर कीड़े के साथ भरा हुआ था। पर इतने दयालु थे, जब कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिरता था उसे उठाकर वहां पर जोर देते थे। तो वासुदेव विप्र महाप्रभु को मिलने गए, जो कि कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे। और जब वो मिलने गए उन्हें पता लगा कि महाप्रभु चल पड़े हैं, और शोक में वो दुखी हो गया। महाप्रभु तो परम भगवान है, अंतर्यामी है। जब उन्हें पता लगा कि वासुदेव विप्र दुखी है उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, महाप्रभु लौटे कुर्मा ब्राह्मण के घर। और जब उनके घर में लौटे महाप्रभु ने वासुदेव विप्र को गले लगाया। जब गले लगाया तो पूरा शरीर जो भरा हुआ था पस के साथ कीड़ों के साथ वो बन गया खूबसूरत युवक का, और खूबसूरत युवक का शरीर बन गया। तो फिर वासुदेव विप्र ने उन श्लोकों की रचना की जिनकी रचना सुदामा ब्राह्मण ने किया था जब वो अपने घर लौटे। सुदामा ब्राह्मण भगवान के भक्त थे, भगवान के मित्र थे, पर गरीब थे। जहाँ पहनने के लिए एक ही कपड़ा था उनके पास धोती, पत्नी के पास एक ही साड़ी थी, पर वो संतुष्ट थे। ब्राह्मण जो है हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। उनकी पत्नी बार बार कहती थी, तुम्हारा एक धनी दोस्त है, उसको जाके क्यों नहीं मिलते। पत्नी की भावना थी कि धनी मित्र को मिलेगा कोई सुविधा मिलेगी, तो पति की भावना थी मेरे मित्र हैं उन्हें मिलने जाता हूँ। तो सुनाम ब्राह्मण गए, भगवान ने उनका स्वागत किया। भगवान ने देखा दूर से उनके बचपन के मित्र आ रहे हैं, तो खड़े होकर गए उनका स्वागत करने के लिए और उन्हें बिठाया, उन्हें बचपन की चर्चा की, पर कुछ मांगे बिना लौट गए। जब वो घर लौट रहे थे तो रास्ते में सोच रहे थे, मैं पत्नी को क्या कहूँगा, मैं इतनी दूर से आया था द्वारका, तो मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं। पर जब भगवान अंतर्यामी है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से रजनते, पर जब वो अपने कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, कुटिया बन गई थी महल, पत्नी फटी हुई साड़ी की बजाय रेशम की साड़ी में। तो वो समझ गए ये सब संभव हुआ है उनके मित्र की कृपा के कारण। तो फिर उन्होंने अनेक स्तुतियों की रचना की। तो वासुदेव बेपरा जो महाप्रभु के गले लगने से खूबसूरत युवक बन गए, तो उन्होंने भी उन्हीं श्लोकों का उच्चारण किया जो कि सुदामा ब्राह्मण ने किया था। और फिर उन्होंने पूछा कि अभी आपकी कृपा से मैं कितना खूबसूरत योग बन गया हूं, कहीं मैं घमंडी नहीं हो जाऊं, और विनम्रता से रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा, सदा हरि का नाम लो, गीता पढ़ो और हरि के नाम का प्रचार करो। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, जैसे वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, इस संस्था के सब भक्तों का उद्धार हो रहा है। तो इस संस्था के सारे भक्तों का कर्तव्य क्या बनता है, क्या बनता है, घर घर जाकर प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम सबको प्रचार की सेवा में जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो आप सब भक्तों तो आप सब भक्तों से विनती है कि उत्साह के साथ जुड़िए इस सेवा में। असल में हमारे में उत्साह 365 दिन होना चाहिए। माया का मैराथन कितने कितने दिन चलता है साल में, हाँ पूरा साल। आपका मैराथन पूरा साल चलना चाहिए या एक महीना, आप पूरा साल करते हो तो माया के समय हाजिर है। हमारे प्रचार का उत्साह पूरे साल होना चाहिए। तो आप सब मैराथन में जुड़िए, कई बार कल निकल चुके हैं, और प्रयास करो, उत्साहित रहो, अच्छी साधना रखो, और आप देखोगे कि आप जो आपका कोटा है उसको आसानी से कर पाओगे। और अगर आज इस संस्था का प्रचार बढ़ रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, उसका मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। हम कई बार सोचते हैं कोई इन ग्रंथों को नहीं पढ़ता, ये गलत है। इन ग्रंथों को लोग पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, और गीता के जो संदेश है रोज पढ़ोगे तो भी वो कम है, जितने ध्यान से पढ़ोगे उतनी तेजी से उसे समझ पाओगे। आप सब जुड़िए, इस मैराथन की सेवा में, और सब जुड़ोगे, सब जो हमारे गया सब भागते वो भी सब तो जुड़िए और प्रयास करो 2 लाख से भी अधिक ग्रंथों को बांटने के लिए। सबके लिए आ गया खी घोर पर मिलना। कोई क्वेश्चन आचार्य यू वांट टू से समथिंग? हाँ बोलिए।
हरे कृष्ण महाराज, महाराज हम जिसको गीता बांटते हैं देते हैं तो पहले ही सर को क्या बोलना चाहिए जिसके वजह से वो तुरंत गीता लेने के लिए आग्रह प्रकाश करें? क्योंकि हम पहले श्लोक बोलते हैं, ये बोलते हैं, उसको समझ में नहीं आता।
देखिए अलग अलग भक्त के अलग अलग प्रचार के लाइन है, कोई ऐसा एक मंत्र नहीं है जो बोलोगे तो लोग गीता जरूर लेंगे। आप समझे? हाँ बोल सकते हो, ज्ञान का ग्रंथ है, अति खुशी का साधन है, पर ऐसा कोई मंत्र नहीं है ये लाइन बोलो तो लोग गीता जरूर ले रहेगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अलग अलग लाइनों के साथ। सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, आवश्यकता है, सुबह साधना अच्छी रखो और उत्साह से करो। साधना अच्छी रखोगे, मैं तो सबके दिन भक्तों को हमेशा कहता हूँ माला का जाप इत्यादि सुबह समाप्त करो, तो सारा दिन चेतना ऊंची रहेगी। जब आप मंदिर में सेवा करते हो तो माया का दर्शन कम होता है, तो जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हो बाहर तो माया का दर्शन भी बढ़ जाता है, ठीक है ना? क्या होता है, माया को देखते हो। तो इसके लिए खास करके जब आप मैराथन की सेवा कर रहे हो आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। और कोई? यस
महाराज, हम गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु की इच्छा पूरी करते हैं तो किस प्रकार हमारे गुरु को पता चलता है कि हम उनके मनोभाव को पूरा कर रहे हैं?
ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है जब आप सेवा कर रहे हो तो परम भगवान प्रभुपाद सारे आचार्य सबको पता रहता है आप सेवा कर रहे हो। समझे? जब आप सेवा करते हो प्रचार की या कोई भी अच्छी सेवा, तुरंत भगवान पहचान लेते हैं और ये आपके रिकॉर्ड में आ जाता है, आज के दिन इस भक्त ने इतना प्रयास किया था, इतने ग्रंथ बांटे थे। और जैसे महाप्रभु ने कहा प्रचार करो और जो रिजल्ट है वो मुझे सुनाओ, इसलिए हम रोज सुबह भगवान को सुनाते हैं प्रचार का परिणाम। और हम सबके दिन स्कोर भी पढ़ते हैं। ठीक है? और कोई प्रश्न? नो? और कोई प्रश्न नहीं? कौन?
महाराज आजकल बुक डिस्ट्रीब्यूशन में किसी जैसे गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो जिसको भी बोलो बोलता हमारे घर में गीता है पहले से।
आप इन्हें बोलो
तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है आपके यहाँ शादी है ब्याह है कोई फंक्शन है उनको बांट देना। अब वो बोलते हैं वो तो सब लोग नशेड़ी हैं,
सब लोग
वो कोई भी कोई दारू पीता है कोई कुछ पीता है उनको कहाँ गीता दें। तो लेकिन फिर भी लोग ले लेते हैं, फिर इस तरह के लोग वो लोग भी गीता ले लेते हैं, जैसे 100 रुपए की बोतल पीते हैं तो 100-150 क्या है, तो लेकिन गीता को घर में रख देते हैं, तो इससे अपराध नहीं होगा?
गीता को फेंके तो अपराध होगा, पर जो भक्त है वो भगवान की प्रशंसा के लिए हर प्रकार का रिस्क लेता है। हमारे भक्त हैं विदेशों में जिन्होंने कत्ल खाने में जाकर गीता बेची है। तो रिस्क लेना पड़ता है भगवान के प्रचार के लिए। और अगर कोई कहे हमारे पास गीता है तो आप कह सकते हो आप किसी और मित्र को दे सकते हो। पूछो घर में कितने सेल फोन हैं, वो कहेंगे 7-8, तो 7-8 गीता भी होनी चाहिए। हर घर में काम से काम 7-8 सेल फोन हैं। हर व्यक्ति के पास कम से कम 2-3 सेल फोन है ना, सब क्या लगा। तो अगर आप 7-8 सेल फोन रख सकते हो तो 7-8 गीता भी रख सकते हो। और प्रभुपाद जी ने कहा इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि एक श्लोक अगर कोई पढ़ ले और अपना ले उसे जीवन सफल हो सकता है। तो प्रयास करो, प्रचार करो, भगवान आपको बुद्धि देंगे। मोर ओके, हरे कृष्णा।